अगला शीर्षक है केशव की छंद योजना और इसे लिखा है डॉक्टर गार्गी गुप्त ने। महाकाव्य की परिभाषा देते हुए आचार्य दंडी ने कहा है कि प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए एवं लोक रंजन के हेतु उसे केवल सर्गांत में परिवर्तित कर देना चाहिए। हेमचंद्र ने इस परिवर्तन को स्वीकार करके भी उसे काव्य की रूढ़ी नहीं माना, क्योंकि उस समय कुछ महाकाव्य ऐसे थे जिनमें आद्योपांत एक ही छंद का प्रयोग हुआ था, जैसे रावण, विजय, सेतुबंध आदि। विश्वनाथ ने दोनों नियमों का समर्थन करते हुए यह भी कहा कि इन दोनों नियमों का पालन सर्वत्र न होकर कतिपय महाकाव्यों में एक ही सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग होता है। नानावृतमयः क्वापि स्वर्ग सर्गः कश्चन दृश्यते। उपरोक्त आचार्यों के विभिन्न मतों को देखने से पता चलता है कि महाकाव्यों की छंद संबंधी मान्यताएं सदैव परिवर्तनशील रही हैं। जैसे जैसे महाकाव्यों की रचना होती रही, वैसे ही उनकी परिभाषाएं भी बदलती गई। छंद आदि महाकाव्य को रोचक बनाने के उपकरण थे, अतः उन्हें संकीर्ण सीमाओं से आबद्ध नहीं किया जा सकता था। एक सर्ग में छंद एक हो अथवा अनेक, उस पर महाकाव्य की श्रेष्ठता निर्भर नहीं थी। वास्तविक महत्व तो कवि की छंद योजना सामर्थ्य का था। यदि कवि विविध छंदों में सफलतापूर्वक काव्य रचना कर सकता था तो उसके काव्य का महत्व बढ़ता ही था। परंतु ऐसे कवि बहुत कम थे जिनका बहुछंदों पर पूर्ण अधिकार था, अतः हमें बहुछंदी काव्य भी बहुत कम मिलते हैं। विश्वनाथ की परिभाषा इस बात का प्रमाण है कि उस समय कुछ ऐसे महाकाव्य अवश्य वर्तमान थे जिनके सर्गों में बहुछंदों का प्रयोग हुआ था, यद्यपि उन्होंने अनेक नाम उनके नाम नहीं दिए थे। संस्कृत महाकाव्यों के अतिरिक्त छंद वैविध्य रासों ग्रंथ की भी एक विशेषता थी। इस दृष्टि से संदेश रासक में विविध छंदों की छटा दर्शनीय है। अपभ्रंश भाषा में नयनंदी कवि के सुदंसन चरियु, देव सेणगणी के सुलोचना चरियु एवं पंडित लाखू के जीर्णदत्त चरियु में भी छंदों की विविधता के दर्शन होते हैं। इस प्रकार के काव्यों को एक प्रकार से रामचंद्रिका का पूर्व रूप कहा जा सकता है, यद्यपि यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि केशव ने यह प्रेरणा किसी भाषा के काव्यों से ली, परंतु अधिक संभव यही प्रतीत होता है कि उनको यह प्रेरणा संस्कृत काव्यों से प्राप्त हुई होगी जो आज विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गए हैं, परंतु केशव के समय में वर्तमान रहे होंगे। यह भी हो सकता है कि इस प्रकार के काव्यों का आचार्यों की परिभाषाओं में उल्लेख परंतु अभाव देखे और अन्य भाषाओं में उनकी उपस्थिति देख केशव ने हिंदी भाषा में भी यह प्रयोग करने का निश्चय किया हो। जो भी हो, केशव पूर्व बहुछंदी रचनाओं की उपस्थिति थी और केशव को यह प्रेरणा पूर्ववर्ती साहित्य से ही प्राप्त हुई थी। इतना अवश्य है कि हिंदी भाषा में इस प्रकार की रचना सर्वप्रथम केशव ने ही की थी तथा विविध छंदों पर पूर्णाधिकार होने के कारण वह उसमें पूर्णतया सफल भी हुए। रामचंद्रिका में केशव ने कथारंभ में यह स्वीकार किया है, रामचंद्र की चंद्रिका वर्णत हो बहुछंद। अपने पूर्ववर्ती बहुछंदी महाकाव्यों को देखकर केशव ने अपने इस ग्रंथ में अनेक छंदों का प्रयोग किया है और इस दृष्टि से रामचंद्रिका हिंदी साहित्य में एक साहित्यिक प्रयोग है। हिंदी साहित्य में इस प्रकार का कठिन परंतु सफल प्रयास न केशव के पूर्ववर्ती किसी कवि ने किया है। केशव के पूर्व जायसी का पद्मावत तथा तुलसी का रामचरितमानस महाकाव्य के क्षेत्र में दो प्रशंसनीय प्रयास हो चुके थे, परंतु छंदों की दृष्टि से इनमें कोई उल्लेखनीय बात नहीं थी। केशव हिंदी साहित्य को संस्कृत की पूर्व परंपराओं के अनुकरण पर एक बहुछंदी काव्य भेंट करना चाहते थे और रामचंद्रिका उनकी उसी प्रेरणा का परिणाम है। पीताम्बर दत्त बर्थेवाल ने रामचंद्रिका में कवित्व का विश्लेषण करते हुए कहा है कि रामचंद्रिका केशव की सबसे उत्कृष्ट रचना है, पर वह भिन्न भिन्न लक्षणों के उदाहरण स्वरूप रचे गए पदों का तरतीबवार संग्रह ज्ञात होता है। दूसरों तक के उदाहरण है, छंद की दृष्टि से यह पिंगल का ग्रंथ दिखता है, एकाक्षरी से लेकर कई अक्षरों तक के छंदों का मिलना इसे पुष्ट करता है। रामालंकृत मंजरी केशव का बनाया हुआ एक पिंगल ग्रंथ है, यह हम कह चुके हैं। रामचंद्रिका की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में से कुछ छंदों के नीचे तथा रामालंकृत मर्जिया लिखकर उन छंदों के लक्षण लिखे हैं। संभव है रामचंद्रिका रामालंकृत मंजरी का परिवर्तित या परिवर्धित रूप हो या यह छंद रामालंकृत मंजरी में हो। केशव ने जिस प्रकार काव्य तथा रस का प्रशिक्षण देने के लिए रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया की रचना की है, उसी प्रकार हो सकता है कि छंद की शिक्षा देने के लिए उन्होंने कोई पिंगल ग्रंथ लिखा हो जिसका नाम रामालंकृत मंजरी भी होना संभव है। परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि केशव ने रामचंद्रिका के माध्यम से छंदों का शिक्षण कार्य नहीं किया है। यदि हम पीताम्बर दत्त भड़तवाल के कथनानुसार यह भी मान लें कि केशव ने रामचंद्रिका में कुछ छंद रामालंकृत मंजरी से उद्धृत किए हैं, तब भी रामचंद्रिका का पिंगल ग्रंथ होना सिद्ध नहीं होता। रामचंद्रिका के कुछ छंद कविप्रिया में पाए जाते हैं, परंतु उससे कविप्रिया राम काव्य नहीं बन जाती। जिस प्रकार केशव ने रामचंद्रिका के कतिपय छंद कविप्रिया में सम्मिलित कर लिए हैं, उसी प्रकार उन्होंने रामालंकृत मंजरी के कुछ छंद प्रसंगोचित समझकर रामचंद्रिका में सम्मिलित कर लिए होंगे। इससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि रामालंकृत मंजरी नामक किसी पिंगल ग्रंथ की रचना केशव ने रामचंद्रिका के पूर्व ही की थी। छंदों की दृष्टि से रामचंद्रिका प्रयोग ग्रंथ है, शिक्षण ग्रंथ नहीं, और विश्वनाथ की परिभाषा के अनुसार यह उसके महाकाव्यत्व की एक विशेषता। वैदिक काल से ही छंद काव्य का एक आवश्यक गुण रहा है। वेदों की रचना छंदोबद्ध ही हुई है। यजुर्वेदी के पास तीन पग चलता हुआ पुरोहित हाथ में अग्निपात्र लेकर कहता है, तू प्रतिद्वंदी नाशक विष्णु का चरण है, गायत्री छंद पर आरूढ़ होकर पृथ्वी पर चल, तू शत्रु नाशक विष्णु का चरण है, त्रिष्टुप छंद पर आरूढ़ होकर वायु में चल, तू द्वेषी नाशक विष्णु का चरण है, जगती छंद पर आरूढ़ होकर आकाश में चल, तू विरोधी नाशक विष्णु का चरण है, अनुष्टुप छंद पर आरूढ़ होकर विश्व के संपूर्ण भागों में चल। प्रस्तुत अवतरण में से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस समय देवताओं की स्तुतियां विभिन्न छंदों में की जाती होंगी तथा उनके रचयिता छंद शास्त्र से भलीभांति परिचित रहे होंगे। उपरोक्त छंदों का प्रयोग केवल वेदों में ही हुआ है, अतः वे वैदिक छंद कहलाते हैं। वेदों परवर्ती साहित्य में प्रयुक्त छंद लौकिक छंद कहलाते हैं, जिनके दो भेद माने गए हैं, मात्रिक तथा वर्णिक। हिंदी कवियों ने संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दोनों प्रकार के लौकिक छंदों का प्रयोग किया है। केशव से पहले जिस कवि ने अपने काव्य में सबसे अधिक छंदों का प्रयोग किया है वे हैं महाकवि तुलसीदास, परंतु उनका छंद प्रयोग इतना सचेष्ट नहीं है कि उनके मानस को छंद काव्य कहा जा सके। केशव के पूर्व डिंगल भाषा का एक राम काव्य रघुनाथ गिंतारो अवश्य मिलता है, जिसमें विविध छंदों में राम कथा कही गई है। केशव ने रामचंद्रिका में मात्रिक तथा वार्णिक दोनों प्रकार के लौकिक छंदों का प्रयोग किया है। स्वयं केशव के काव्य में भी उनके अन्य ग्रंथों की अपेक्षा रामचंद्रिका में सबसे पहले अधिक छंदों का प्रयोग हुआ है। उन्होंने कथारंभ करने के पूर्व ही प्रस्तावना में कह दिया है, जगत जाकी ज्योति जग एक रूप स्वच्छंद, रामचंद्र की चंद्रिका वर्णत हो बहुछंद। ग्रंथ रचना का कारण बताते हुए केशव ने एकाक्षरी से लेकर अष्टाक्षरी छंद तक के छंदों के उदाहरण एक ही स्थल पर दे दिए हैं। एकाक्षरी छंद सी धी री धी, द्व्यक्षरी छंद राम नाम सत्य धाम, त्र्यक्षरी छंद और नाम को न काम, चतुक्षरी छंद दुख क्या टरी है हरिजु हरि है, चतुर्क्षरी छंद वर्णियो वरण सो जगत को शरण सो, पंचाक्षरी छंद सुख कंद है रघुनंदन जू, जय यो कहे जगवंद जू, षडक्षरी छंद गुनी एक रूपी सुनो वेद लावे गावे, महादेव जाको सदा चित लावे, सप्ताक्षरी छंद विरंची गुण देखे गिरा गुण नहीं लेखे, अनंत मुख गावे विशेष ही न पावे, अष्टाक्षरी छंद भलो बुरो न तू गुने वृथा कथा कहे सुने, न राम देव गाई है न देव लोक पाई है। परंतु इसके बाद ही संभवतः यह सोचकर कि पाठक को रामचंद्रिका के संबंध में छंद ग्रंथ होने का भ्रम न हो जाए, वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं कि छंद परिवर्तन उनकी सचेष्ट किया है, क्योंकि उनका लक्ष्य ही बहुछंदी काव्य प्रस्तुत करना है, इसलिए वे जानबूझकर ही रामचंद्रिका का वर्णन बहुछंदों में कर रहे हैं। जिस प्रकार केशव ने भाव तथा शैली के लिए संस्कृत साहित्य का ऋण लिया है, उसी प्रकार छंदों के क्षेत्रों में भी संस्कृत साहित्य के ऋणी हैं। संस्कृत काव्य ग्रंथों में प्रायः एक भाव डेढ़ अथवा आधे श्लोक में भी वर्णित दिखाई देता है। केशव के पूर्व हिंदी में यह परिपाटी प्रचलित नहीं थी। हिंदी में एक भाव का वर्णन पूर्ण छंदों में मिलता है, चाहे यह छंद एक हो अथवा एक से अधिक, परंतु अर्ध छंदों का प्रचलन हिंदी में नहीं था। केशव ने संस्कृत के अनुकरण पर संस्कृत छंदों की परिपाटी को हिंदी में लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहीं कहीं पर रामचंद्रिका में डेढ़ अथवा अर्ध छंदों का प्रयोग किया है। सिरोभूषण का वर्णन करते हुए सुख कहता है, सीस फूल सुभ जरयो जराय, मांग फूल सोहे संभाय, वेणी फूलन की बरमाल, भाल भले बेंदा युगलाल, तम नगरी पर तेज निधान, बैठे मनु बारह भान। यह टेढ़ छंद है, परंतु केशव ने उनको एकत्र ही रखकर एक छंद बना दिया है। इस प्रकार भ्रिकुटी वर्णन में डेढ़ छंद है। भ्रिकुटी कुटिल बहु भायन भरी, भाल लाल दुनि दिसात खरी, मृगु में तिलक रेख युग बनी, तिनकी शोभा शोभित घनी, जनु यमुना खेलती शुभनाथ, गाथ परसन पितही पसारियो हाथ। केसों से टपकते हुए जलकड़ों का भी वर्णन डेढ़ी छंद में किया है। केसनी ओरनी कीकर रमय, त्रिक्षणी को तमी जनुबमय, सज्जल अंबर छोड़त बने, छूट रहे जल के कण घने, भोग जले तन सो मिली करे, छोड़त जानीते रोवत खड़े। चंद्रमा का वर्णन राम दोही चरणों के अर्ध छंद में करते हैं। अंगद को पितु सो सुनिए जू, सोहत तारही संग लिए जू। ताटंक वर्णन में भी दोही चरणों के अर्ध छंद का प्रयोग किया गया है। अति झुल मुलिन सह झलक लिन, फटरात पटाका जनु नवीन, भरत राम के सीता वनवास के अनुचित कार्य से क्षुब्ध होकर कहते हैं, हौ ते ही तीरथ जाए पड़ोंगे, संगति दोष अशेष हरोंगे। संस्कृत वाक्यों में अधिकांश अतुकांत छंदों का प्रयोग मिलता है। संस्कृत वृत्त भिन्न तुकांत के लिए भी उपयुक्त भी है, परंतु हिंदी अथवा किसी अन्य आर्य भाषा में भिन्न तुकांत छंदों का प्रायः अभाव ही है। केशव से बहुत पूर्व वीरगाथा काल में चंद्रवरदाई ने अतुकांत छंदों का प्रयोग किया था। केशव ने रामचंद्रिका में इस प्रकार के बहुत छंद तो नहीं लिखे, परंतु हिंदी भाषा में इस प्रकार का प्रयोग करने का प्रयास अवश्य किया है। विश्वामित्र राजा जनक की प्रशंसा में कहते हैं, गुणगण मणिमाला चित चातुर्य साला, जनक सुखद गीता पुत्रिका पाय सीता, अखिल भवनु भर्ता ब्रह्म रुद्रादि कर्ता, थिर चर अभिरामी किया जामातु नामी। उपरोक्त छंदों में यद्यपि माला साला गीता सीता भर्ता कर्ता अभिरामी नामी शब्दों में अंत्यानुप्रास है, परंतु छंद अतुकांत ही है। रामचंद्रिका में अतुकांत छंदों के कुछ उदाहरण आगे दिए जा रहे हैं। जग यशवंत विशाल, राजा दशरथ की पूरी, चंद्र सहित सब काल, भाल थली जनु इसकी, लियो चाप सब हाथ, तिनिहु भैयन रोस करी, बरज्यो श्री रघुनाथ, तुम बालक जानत कहा, प्राणनाथ रघुनाथ, जिय की जीवन मूरी हो, लक्ष्मण हे तुम साथ, छमियो चुक परी जू कुछ, राम देखी रघुनाथ, रथ ते उतरे बेगी दे, गहे भरत को हाथ, आवत राम बिलोकियो। रामचंद्रिका में छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े छंदों का प्रयोग हुआ है। एक ओर जहाँ केशव ने एक अक्षर के श्री छंद का प्रयोग किया है, वहाँ उन्होंने छप्पे रोला और कुंडलियाँ जैसे बड़े छंदों का भी प्रयोग किया है। श्री छंद सी धी री धी, जिन हाथन हठी हर्षती, जहनत हरनी रिपुनंदन, तिन न करत संहार, कहा मदमत गए नंदन, जिन बेधत सुख लक्ष्य लक्ष्य, नृप कुंवर कुंवर मणि, तिन बानन वाराह बाग, मारत नहीं सिहन, नृपनाथ नाव दशरथ, यह कथ अकथा नहीं मानिए, मृग राज राजकुल कमल कहाँ, बालक वृद्ध न जानिए। रोला, शुभ सूरज कुल कलश, नृपति दशरथ भय भूपति, तिनके सुत भये चारी, चतुर चित चारुमति, रामचंद्र भुवचंद्र भरत, भारत भवभूषण, लक्ष्मण अरु शत्रुधन, दिन दानव दल दूषण। प्रचलित छंदों के अतिरिक्त केशव ने कतिपय मौलिक छंदों का भी प्रयोग किया है, जैसे सुगीत मदन मल्लिका तथा सिंह विलोकित आदि। सनाढ़ी जाति गुणाढ़ी है, जगसिद्ध सुध स्वभाव, सुकृष्ण दत्त प्रसिद्ध मही, मिश्र पंडित राव, गणेश सो सुत पाइयो, बुध काशी नाथ अगाध, अशेष शास्त्र विचारी कह, जिन जानियो मतसाध। यह सुगीत छंद केशव का मौलिक छंद है। यह 18 वर्णों का छंद है, जिसमें केशव ने आदि में जगण, फिर भगण, रगण, सगण और अंत में दो जगण रखे हैं। अति मुनि तन मन तहां मोहि रहयो, कछे बुधि बल वचन न जाए कहयो, पशु पक्षी नारी नर निरखी तबै, दिन रामचंद्र गुण गणत सबै। उपरोक्त सिंहाविलोकित छंद केशव का मौलिक वर्णित छंद है। देश देश के नरेश सोभिजय सबै सुबेश, जानिए न आदि अंत, कौन दास कौन संत।